اور جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آسٹکارک کیا ہے اور ابھن سٹکارک کیا ہے. ایک تو کارک جو کریا کے پرتی ذمہ وار ہو انہیں کارک کہتے ہیں, جن کا سیدھا کریا پر اثر پڑتا ہو انہیں کارک بولتے ہیں. تو وہ اپنے ہندی بھاشا میں جب پڑھے ہوں گے تو آٹھ کارک پڑھے ہوں گے, وہ کرتا, کرم, کرن, سمپردان, اپادان, سمبندھ اور ادھکرن اور سمبودھن. لیکن اس میں سمبودھن اور سمبندھ ان دو کو کارک نہیں مانا ہے ادھیاتم نے, اور ویاکرن کے حساب سے بھی وہ نہیں ہے کہ جن کا کرتا سے سمبندھ ہو. تو سمبودھن کارک ہے کہ ہے رام تم ایسا کرو, جو کچھ بھی اپن بولے ان کے بارے میں تو وہ جو بات اپن کو بولنا ہے اس میں رام کو کچھ نہیں کرنا, کرتا کرم میں رام کچھ نہیں ہے. اس لیے وہ سمبندھ کارک میں دشرتھ کا بیٹا رام, دو رام تھے نا, ایک پرس رام ایک داسرتھی رام. تو جب کوئی بولے کہ بھائی رام نے رامن کو مارا تو پرشن کھڑا ہوتا کون سے رام نے, کہ دشرتھ کے پتر رام نے. تو مارنے روپ جو کریا ہوئی رامن کے مرنے روپ کریا ہوئی اس میں دشرتھ کا کچھ بھی یوگدان نہیں ہے, جو کچھ بھی ہوا وہ رام میں ہوا ہے. صرف یہ بتانے کے لیے کہ کون رام ہے, پرس رام ہے کہ داسرتھی رام ہے, تو کا شبد کا پریوگ کیا گیا ہے. اس لیے دو کارک کارک نہیں مانے سٹ کارک. اب اپنے دو ہوتے ہیں نشچے اور ویوہار, کہ جب ایک کاری ہوا تو اس سے بھن بھن کارک کرتا کرم کرن سمپردان ہوں تو انہیں بولتے ہیں ویوہار سے کارک اتوا بھن کارک, اور جب ایک ہی وہی چیز سب کچھ ہو تو اسے بولتے ہیں ابھن سٹ کارک. اب ان سٹ کارکوں کی پریبھاشا ایسی ہے, سوتنترا کرتا, جو سوتنتر روپ سے کاری کو کرے تو اسے کرتا اپن کہتے ہیں. پھر وہ کاری جس میں ہو اس کاری کو جو ہوا نا نیا کرم کہتے ہیں. سادھک تم کرنم, جس سادھن سے ہو اسے کرن کہتے ہیں, جس کے لیے ہو اسے سمپردان کہتے ہیں, جس میں سے ہو اسے اپادان کہتے ہیں, اور جس کے آدھار سے ہو اسے ادھکرن کہتے ہیں. تو بھن کارک میں ادھارن شاستروں میں دیے ہیں, برکش تشتتی کان کسم تے برکشم لتا سنستا رکشنا ویہتو نشاد رکشنا ویہتو گجو نپتتو برکشائے دیم جلم برکشات پترانی پتنتی اغادا برکشس سا خونتا برکشنیر مدم کرتم سکنینا رکشکم کم پسے. آٹھوں وبھکتیاں برکش پہ لگا دی, لیکن سب الگ الگ بدل گئے کہ برکش میں پکشی لوگوں نے گھونسلے بنا رکھے ہیں, ابھی الگ واقع ہے. پھر برکش جنگل میں کھڑا ہے, برکشتی کان ہے نا, اور ایسے برکشم لتا سنستا, برکش کے اوپر بیل چڑھ رہی ہے. ورکش نا بھی ہے تو گجو, ورکش سے ہاتھی کو باندھ دیا گیا ہے. ورکشائے دے ہم جلم, ورکش کو پانی دو, ابھی پانی الگ آ گیا, مطلب سب چیزیں الگ الگ ہیں. ورکش سے پتے गिरते हैं और वृक्ष की शाखाएं बड़ी बड़ी हैं, लंबी लंबी हैं डालियां। पर हे वृक्ष क्यों कंपसे, हे वृक्ष तुम कांपते क्यों हो? वृक्षे नीण मिदम के तुम सगुणना, पक्षियों ने वृक्ष में घोंसले बना रखे। राम पर भी घटित किया है, राम का भी छंद है। एक राम तिष्ठति क्या है, रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेश नमा रामेणा विहतो निशाचर चमु रामायतास्मै नमा रामान्नास्ति परायणं परतरम् रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलया मया भवतु नो हे राम माम उद्धरे। इसमें भी आठों व्यक्तियों का प्रयोग किया है। हर चीज बदल जाती है। तब वो कहते हैं कुमार ने चक्र और चीवर से घड़ा बनाया पानी ठंडा पानी करने के लिए, लोग ठंडा पानी पिए, इसके लिए कुमार ने मिट्टी से घड़ा बनाया और कहा अपने चबूतरे पर बैठकर जो भी वाक्य बना है पूरा तो छह ही कारक उसमें आ जाए। कि ऐसा कुमार ने ये भिन्न सटकारक का उदाहरण है। और वो कहते हैं कि आत्मा ने जब केवल ज्ञान रूपी घड़ा बनाया, मैंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, तो क्या हुआ था कि आत्मा ही तो स्वतंत्र प्रणय करता था, उसने ही वो केवल ज्ञान प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया कि केवल ज्ञान प्राप्त किया है। कैसे प्राप्त किया है कि स्वयं से ही अपने आत्मा का ध्यान करके प्राप्त किया है। वो केवल ज्ञान फिर किसको दिया कि खुद को ही दिया। कहां से आया कि अंदर में से ही आया है वो, और स्वयं के आधार से ही बनाया है, तो इसलिए वो स्वयंभू हो गए। माने अभिन्न षटकारक, केवल ज्ञान और अनंत सुख, दो चीजें चल रही ना। तेरहवीं गाथा में केवल ज्ञान अनंत सुख की बात थी, पंद्रहवीं गाथा में केवल ज्ञान की बात थी, और ये सोलहवीं गाथा है। तो ये 100% सत्य, सोलह आना सत्य, 100% सत्य ये बात है कि कोई को कोई कुछ भी लेता देता नहीं है। अब देखो मैं ये पढ़ना चाहता हूं जिसे आपको देखो किस तरह अमृतचंद ने इसको घटित किया है। इसकी टीका देखो, टीका शुद्धोपयोग की मिल गया पेज नंबर 23 पर प्रवचन शास्त्र में। शुद्धोपयोग की भावना के प्रभाव से समस्त घाती कर्मों के नष्ट हो जाने से जिसने शुद्ध अनंत शक्तिवान चैतन्य स्वभाव प्राप्त किया है, ऐसा यह पूर्वोक्त आत्मा, जिस आत्मा की बात चल रही है उनको अनेक विशेषण लगा करके उन्होंने यहां कहा है, लेकिन कर्ता आत्मा है, माने वाक्य का कर्ता आत्मा है। क्या किया देखिए, अपन ने इसमें नंबर डाल दिए, तुम्हारी किताब में नंबर डाले, शुद्ध अनंत शक्ति युक्त। ये हर नंबर के बाद आपको ये शब्द मिलेगा, शुद्ध अनंत शक्ति युक्त। एक नंबर पे देखो, दो नंबर पे देखो, शुद्ध अनंत शक्ति युक्त। तीन पे देखो, शुद्ध अनंत शक्ति युक्त है ना। चार नंबर पे भी देखो, शुद्ध अनंत शक्ति युक्त। फिर पांच नंबर पे शुद्ध अनंत शक्ति रूप युक्त का होता है, रूप का। और फिर छठवें पे शुद्ध अनंत शक्ति युक्त, माने एक एक शब्द शुद्ध अनंत शक्ति युक्त है। हरेक कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान सब में लगाया। तो मतलब की बात उन्होंने ये कहा कि शुद्ध अपनी जो अनंत शक्ति का एक स्वभाव है, उसने स्वतंत्र रूप से ये शुद्धोपयोग किया, मतलब जिससे जो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, सर्वज्ञता जो उन्होंने प्राप्त की, अपने शुद्ध अंतःशक्ति से प्राप्त की हरेक की मैं ये सब दोनों ने नाभि से जोड़ा कि उसका कर्ता भी यही है, कर्म भी यही है, करण भी यही है। और इस तरह से कर्तृत्व, जिसने कर्तृत्व के अधिकार को ग्रहण किया है, ऐसा वह आत्मा कर्ता। फिर शुद्ध आनंद शक्ति ज्ञान रूप से प्रणमित होने से स्वभाव के कारण जो स्वयं ही प्राप्त होने से कर्मत्व का अनुभव करता हुआ ऐसा आत्मा, ऐसा हर एक में लगाते जाना, प्राप्त होता है वो कर्म होता है, स्वतंत्र रूप से जो करे वो कर्ता होता है, और साधन देखो शुद्ध अनंत शक्तियुक्त ज्ञान रूप से प्रणमित होने के स्वभाव से स्वयं साधकतम होने से कर्णत्व को धारण करता हुआ। इसमें कुछ नहीं है, ये इतना ध्यान रखना है, एक तो जिसकी भी बात कर रहे वो करने में समर्थ से शक्ति युक्त, एक बात तो ये कही है, और दूसरी जिस कारक की बात कर रहे उस कारक की परिभाषा दे दी, स्वतंत्रता कर्ता की दे दी, साधकतम करण की दे दी, इन दोनों को जोड़ के और फिर ये कह दिया कि इस तरह से उसने ये चीज प्राप्त की। उन्होंने एक बिल्कुल सिस्टम से उन्होंने वो चीज बनाई है, आप उस सिस्टम आपके ध्यान में आ जाए तो आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ख्याल में आ जाएगा आपको कर्ता कर्म के जी आते ही हैं और वो अपने आत्मा के पुरुषार्थ से हुए हैं। दो विशेषण कम लगेंगे कि ज्यादा लगेंगे उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। असली बात तो ऐसी है, जैसे देखिए जितने पुराण शास्त्र है ना, ये रविशेनाचार्य ने, जिनसेनाचार्य ने संस्कृत भाषा के छंदों में लिखे थे, और फिर जब हिंदी में इनके अर्थ लिखे गए, फिर वचनिकाएं लिखी गई, तो वचनिकाओं में खासकर दौलत राम कासरीवाल वगैरह जैसे जो लोग थे ना, इनने एक बहुत बढ़िया सिस्टम अपना विकसित किया। दादा आपने देखे होंगे जब आपने वो पढ़े, कि उन्होंने कहा कि पहले कर्ता खोजा, कर्म खोजा, करण खोजा, क्रिया खोजी। अब वो वाक्य तो है 10 लाइन का, लेकिन 4 चीजें खोज ली, और उन्होंने पहले ही कह दी अलग से कि रामचंद्र जी सीता जी सो कहते भय, ये उन्हीं की भाषा है। फिर उनके विशेषण कहते कैसे हैं रामचंद्र जी, कि पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए उत्सुक हैं, अंदर से सुबह राज तिलक होना था और अब वनवास हो रहा है तो भी साम्य भाव के धारक हैं, और कैसे हैं रामचंद्र जी, तो फिर उनके जितने विशेषण हैं वो और कैसे हैं, और कैसे हैं करके वो बताएंगे। फिर कहेंगे सीता जी से कहा ना, तो कैसी हैं सीता जी, कि जनक की पुत्री हैं, अत्यंत सोम भाव को धारण करने वाली हैं, पति परायणा हैं, और वो जितने जितने वो कैसी हैं, कैसी हैं, हर बार ऐसा बोल के और कैसी हैं सीता जी, और कैसी हैं सीता जी, फिर सदा सीता जी हो गई। फिर कहते भये, तो कैसे कहते भये, तो अत्यंत उत्सुक होकर कहते हुए, एकदम वैराग्य भाव के लिए हुए कहते हुए, अत्यंत गंभीरता पूर्वक कहते हुए, और कैसे कहते हुए, फिर वो कहने के जितने विशेषण हैं उन्हें कहेंगे। इस तरह से पूरे पुराण लिखे गए। तो कहानी अभी पुराने लोगों को पढ़ने की आदत पड़ गई थी, वे समझ नहीं भी लेते थे। अब मैं आपसे बोलता हूं कि आप शास्त्री हो, अब मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं, आपको उसका उसके आधार से अनुवाद करना है, वो पुरानी हिंदी से नई हिंदी में लिखना है, तो आप क्या करेंगे। मैं स्टाइल निकाल, मैं सबकी स्टाइल निकालता हूं, ऐसे कहानियां कैसी लिखी, एक समय पिपला चलती वहां स्वामी वहां भी, उनने ऐसी लिखी, भी उनने ऐसी लिखी, किस तरह लिखी। अब उनके अनुवाद करना है तो क्या करना चाहिए, कि वो सब कर्ता कर्म करण निकालकर उन विशेषणों को क्रम से व्यवस्थित लगाना चाहिए कि रामचंद्र जी कहते हैं तो रामचंद्र जी के विशेषण सब अत्यंत धीर गंभीर पिता की आज्ञा पालन करने में तत्पर हैं, माँ बाप की सेवा करने में तत्पर राम अत्यंत विनयशील और ऐसी ऐसी सीता से कहते भये अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहते माने वो सारे जो विशेषण उनने और कैसे करके लिखे थे उनको यथा व्यवस्थित वाक्य के अंदर ले आओ अब वो पूरा एक वाक्य बना दो वो तुम्हारा वाक्य चार छह लाइन का बन जाएगा अब कहां कोमा लगाना कहां सेमीकोलन लगाना कहां फुल स्टॉप लगाना वाक्य फुल स्टॉप लगाता ही वाक्य खत्म हो जाता है तो जब तक वाक्य खत्म नहीं होगा तब तक फुल स्टॉप तो आप लगा ही नहीं सकते हो अब बीच में जो कोमा सेमीकोलन वगैरह जो भी लगाए जाते हैं वे वहां वहां लगाएंगे और भी बहुत सी पदियां हैं उसमें अब कभी बैठे मान लो कोई बात बीच में कहनी है तो अब क्या करें उसे कैसे घुसेड़ दें उसके बीच में तो हम आड़ा डैश लगा करके वो बात को कह देते हैं और जब वो बात खत्म होती तो हम फिर आड़ा डैश लगा कर फिर आगे वाक्य को बढ़ाते हैं और पीछे से जोड़ते हैं वाक्य को फिर वो तो बीच की बात अलग सी से हम कह देते हैं बहुत पद्धतियां होती हैं उसमें मतलब वो कोई ऐसा साधारण काम नहीं है एक वाक्य लिखना भी अभी एमए पास कर लेते हैं और नहीं आता उन लोगों को यानी लिख तो लेते ही हैं लिखते तो हैं ही लेकिन वो किस विधि से मुरली रटाए लिख दिए लेकिन किस विधि से वो वाक्य का निर्माण होता है उसका पता नहीं होता है हमें हर चीज में उसमें एक व्यवस्थित होती है तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया जब हमने ये नंबर लगा दिए ना 1 2 3 4 5 6 फिर आपकी सुविधा के लिए कि आप लौट के यहां आ सकते ऊपर लिखा ना ऐसा आत्मा क्या तो ऐसा यह पूर्वोक्त आत्मा आत्मा को पकड़ा फिर कर्म को पकड़ा फिर करण को पकड़ा फिर संविधान को पकड़ा फिर अपादान को पकड़ा समझे ना और ऐसे करते करते और अंत में कह दिया उसने स्वयं सर्वज्ञता को प्राप्त किया सर्वज्ञता को और अनंत सुख को ऐसे अभिन्न सत्कारक अभिन्न सत्कारक की गाथा में वो ये बताना चाहते हैं कि किसी पर के सहयोग का रंच मात्र भी इसमें हुआ नहीं है भगवान का भी नहीं भगवान के आशीर्वाद से भी नहीं फलाने के माता पिता से जितने विशेषण लगते हैं ना आपकी कृपा से आपने ऐसा किया वो सब व्यवहार जन वाक्य होते हैं और उसमें किसी में कुछ दम नहीं होता है किसी का किया कुछ नहीं होता है सब अस्वयं से होता है तो ये सारे वाक्य पूरा एक तरह से वो ये पूरा वाक्य यहां जाके खत्म हुआ है घाती कर्मों के भेदभावों को दूर करके स्वयं आविर्भूत होने से स्वयंभू कहलाता है यानी वो भगवान आत्मा स्वयंभू कहलाता है ये वाक्य है वाक्य क्या है कि भगवान आत्मा को स्वयंभू कहो तो ये भगवान आत्मा स्वयंभू क्यों कहलाता है अपने गांव में एक नादिया बैल आता है बैल लाता है ना कोई लोग ये तो शंकर भगवान का जो वो है ना नादिया बोलते हैं ना वाहन जो शंकर भगवान के मंदिर के सामने वहां बैठा रहता है तो वो उसको लाते हैं और उसको शंभू बोलते हैं वास्तव में स्वयंभू तो महादेव का नाम है उसका जो मालिक है ना महादेव वो स्वयंभू माने वो अपने पुरुषार्थ से उतने उस परे पद पर पहुंचे हैं इसलिए उन्हें कहते शंभू और उसका जो मालिक होता है जो दो 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 एक एक दो रुपये के लिए और तुमसे भीख मांगता है उस शंभू के बाद भगवान के सबसे बड़े वाहन को लेकर जो सर्वोच्च शक्ति वाला है जिसे पर के सहयोग की रंजमात्र आवश्यकता नहीं है जिसका ऐसा अर्थ है उस शंभू के भरोसे भीख मंगवाते हैं और सबसे बड़ी बात है हिन्दुस्तान में कि उसे सर्वज्ञ बताते हैं ये सब जानता है یہ بتا دیں گے اسے پوچھتا ہے شمبھو فلانا آدمی کون ہے, ایسا کر کے کچھ بھی کہ ایک میں نے رومال دیا اور تمہارے ہاتھ میں دیا تم چھپا دو, ایسا کر کے شمبھو لے کے آؤ وہ رومال کس کے پاس ہے کیوں, تو وہ جاتا ہے ایسا کہ گھوم گھوم کے وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کے, اور تو آپ کے ہاتھ میں وہ رومال نکلتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہوگا وہ جانے, لیکن ایسا اسے تماشا کیوں کہتے ہیں وہ, اس لیے کہ اس وہ اتنا جانتا ہے وہ سوئمبھو, وہ بنا کسی کے سہیوگ کے وہ اپنے جاننے کا کام اچھی طرح سے کر لیتا ہے. میں وہ یہ بتا رہا آپ کو, بتا تو یہ رہا ہے کہ یہ بیل سروگ ہے, میں نے سب جانتا ہے جو آپ لوگ نہیں جان سکتے ہو, سمجھے نا, اب ایک ایک روپیہ دے دو. کتنی کتنی اٹپٹی بات ہے سچ مچ, مجھ کو میں ایسا بہت سوچتا ہوں نا, تو اتنا بڑا ودوان بنا رہے جو گدی پہ بیٹھ کے گندھر دیو کی وہ ساری سماج کو بتائیں تتو جان بتائیں, یعنی کوئی منیراج بھی ہو گیا ہے اور یعنی اس کو وہ نہیں ہے, تب پہلے کے زمانے میں بھی ودوانوں کو بلواتے تھے نا منیراجوں کو پڑھانے کے لیے, پنڈت آسا دھر جی تھے, نام سنا آسا دھر جی کا, انہوں نے آچار امر چند کو پڑھایا تھا, امر چند کون جی اپنے اس میں لکھا ہے ٹھکر امر چند آدی منیراجوں کو جنہوں نے پڑھایا تھا, ایسے پنڈت آسا دھر جی, ایسے میرے کہنے کا مطلب ہے ودوان جا کے منیراجوں کو پڑھاتے ہیں تو یہ کوئی منیراجوں کا اپمان نہیں ہے, مطلب گمبھیر بات ہے, وہ وشیشج ہے اپنے وشے کا وشیشج ہے اور وہ اس کے وشیشج نہیں ہے, اب کوئی شاستر پڑھنا ہے انہیں تو پڑھنا ہے تو پڑھنا ہی پڑے گا, وہ تو اس سے ہی پڑھے, گھڑا چاہیے تو کمار کے یہاں جانا پڑے گا, اس میں کیا ہے کہ ہماری عزت کا ہی عزت ہے تو مطلب گھڑا, پڑھنا ہے تو ودوانوں سے پڑھنا پڑے گا نا, تو میں کہتا ہوں کہ ایسے سب کو پڑھانے کے لائق ہم آپ کو بنانے کا گورو انوبھو کرتے ہیں, دم کرتے ہیں تو نہیں کہتا ہوں, تو اپنا اندر انوبھو کرتے ہیں اور پھر ان سے یہ چاہتے ہیں کہ دے جا کے چندا کریں, اپیل کریں, پیسہ مانگیں, بتوانے کے لیے کیا, وہی شمبھو نہیں ہو, شمبھو جیسا ناٹک نہیں ہو گیا کیوں, دلی میں دریا گنج میں یہ اناتھالیہ تھا پہلے, ابھی بھی چلتا ہوگا شاید, تو جب ہم چھوٹے تھے تب وہ لڑکوں کو اور ایک ادھیاپک کو تین چار لڑکوں کو اور لے کر کے سارے دیش میں پیسہ اکٹھا کرنے بھیجتے تھے, تو میں اشوک نگر میں رہتا تھا تو وہاں بھی آتے تھے, تو یہ ناٹک ماٹک کرتے تھے, یہ کرتے تھے, وہ کرتے تھے اور سب بتاتے تھے کہ کتنے لڑکے پڑھتے ہیں, کتنے پیسہ کا خرچہ ہے, کتنا آپ کو دینا چاہیے, ودیارتھیوں کے بھوجن کا اتنا دے دو, فلانے کا اتنا دے دو, ایسا کرتے تھے. مجھے تب سے ہی اندر میں بہت گلانی ہوتی تھی کہ بھائی یہ پڑھ رہے ہیں, اب ابھی اپنے انہیں پڑھنے کا کام کرنے دیں نہ مانگنے کا کام انہیں کیوں کرتے ہیں, یعنی ان کو وہی ہو گیا نا, جیسے وہ کچھ لوگ ہاتھ پیر توڑ تاڑ کے بچوں کو مانگنے کو بیٹھا دیتے ہیں اور ان کے پیسے اکٹھا کر کر کہتے ہیں, جیسے ارے تمہیں مانگنا, تمہیں اکٹھا کرنا ہے تو کرو نا, تمہیں مانگنا ہے تو مانگو, اپیل کرو, تمہاری ویوستھا کرنا ہے تو اس میں ان کو بیچ میں کیوں لیتے ہو, میرے چت کو سویکار نہیں ہوا, تمہیں پتا نہیں ہم نے کیا بنا رہے ہیں, یہ گدی پر بیٹھے ہیں اور سینکڑوں کروڑ پتی نیچے بیٹھے ہوں پنیہ شالی, جن میں منسٹر بھی ہوں اور ویاپاری بھی ہوں, بڑے بڑے آفیسر بھی ہوں, پولیس کا سپرنٹینڈنٹ بھی ہو, کلیکٹر بھی بیٹھا ہو, اور یہ ان کو تتو جان بتائیں تو یہ کتنے گورو سے اندر سے بھرے ہوئے ہونا چاہیے, سوابھیمانی ہونا چاہیے, کتنا ان کا وہ ہونا چاہیے, क्योंकि आप तुम अभिमानी बनाते हो, पंडित विद्यार्थियों को अभिमानी बनाते हो। हाँ हम बनाते हैं, अभिमानी बनाते हैं, स्वाभिमानी बनाते हैं। हमको नहीं है पसंद कि ये पोस्ट दो एक वो अखबार न डालते हैं, हमको एक विद्वान की आवश्यकता है और वो पूजा भी कर ले और वो ये भी कर ले, ये भी कर ले, विद्यार्थियों को भी पढ़ा दे और हमें प्रवचन भी कर दे, हमें भी पढ़ा दे और विद्यार्थियों को भी पढ़ा दे और भगवान की पूजा भी कर ले और इनका बस चले तो झाड़ू भी लगा ले, सारी सब ड्यूटी देते हैं। मैं बहुत डंके की चोट कहता हूं उसमें से कि नहीं, जो हमारा विद्वान तो पढ़ाएगा प्रवचन करेगा वो पूजा नहीं करेगा। पूजा नहीं, तुम अपनी पूजा करो उसका निषेध नहीं है, लेकिन वो पुजारी वाली पूजा कि इन सेठियों के लिए दरब धो धो के ले जाए, ख्याल में आई ना। अपने कर्मचारियों में उन्हें कौन सा क्लास का लेंगे, फोर्थ 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 में मानेंगे ना है? अपना बस चले तो बोलते पंचम माने है? फोर्थ भी नहीं माने, माने ये कैसे हो सकता है। वो फर्स्ट क्लास का आदमी है, उससे आप फोर्थ क्लास का काम कैसे ले सकते हैं। ये दो काम एक साथ नहीं हो सकते। कहते वो जन्मा क्या करेगा बेटा खाली रह। अरे खाली रहे चाहे जो कुछ रहे, सवाल इसका नहीं है कि उसे समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सवाल इसका है कि वो काम का जैसी तुम्हारी दृष्टि में वो है, यदि तुम्हारी दृष्टि में वो उतना ही बड़ा काम हो तो करे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम तो उसे फोर्थ क्लास का नौकर जैसा ट्रीट करते हो, तुम्हारी दृष्टि में तो वो ऐसा है, ये किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए, समझे ना। भूखे बैठे रहना लेकिन ऐसा काम नहीं करना। और डरने का तो काम ही क्या, जिसके पास ये प्रवचन सार और समय सार है, जिस स्वयंभू की गाथा है, कि सब कार्यक्रम से मैं जो भी मैं हूं वो मेरे से ही मैं हूं पूरा, और ऐसा स्वयंभू हरेक है, आगे तो प्रवचन 85 की आएगी 62वीं गाथा में, तो राग में भी स्वयंभू है, राग में भी 6 कारक लगे अभिन्न, हमें राग भी किसी दूसरे ने नहीं कराया, उसका भी हम पूरी तरह से जिम्मेवार हैं। तो ऐसा ही भगवान आत्मा कहां था? तो इस तरह को अच्छी तरह से देख के लगा लेना, ऐसे संस्कृत से हिंदी से। अतः निश्चय से पर के साथ आत्मा का कारकता का संबंध नहीं है, मिल गया। जिससे शुद्धात्म लाभ की प्राप्ति के लिए बाह्य सामग्री ढूंढने की व्यग्रता से जीव व्यर्थ ही परतंत्र होते हैं। हम बाह्य सामग्री खोजते फिरते हैं, कोई काम कराना है तो कहते क्यों जीव बाह्य सामग्री खोजते हैं और खुद परतंत्र क्यों होते हैं, उन्हें परतंत्रता की जरूरत ही नहीं है, ये तो स्वयं का ही कार्य है। देखो अभी जो अपन पढ़ रहे पढ़ा रहे प्रवचन कर रहे, तो ये जो तुम समझोगे ना, ये तुमसे ही समझोगे, हमारे समझाने से नहीं समझोगे। हमारे समझाने से समझते होते तो सब समझ जाते ना, लेकिन कुछ समझते हैं और कुछ नहीं समझते हैं। तो जो उतना उग्र पुरुषार्थ करते हैं उपयोग की एकाग्रता का, वो समझ जाते हैं, उनकी बात पकड़ में आ जाती है, और जो नहीं करते हैं उनको नहीं आती है। इसका मतलब बस तुम्हारा जो समझ का काम हुआ वो तुमसे ही हुआ, किसी दूसरे से हुआ ही नहीं। ये तो निर्णय तो होंगे, हो तो सब व्यवहार का कथन है, इसमें कोई दम नहीं है। अब इसी पर तो हम भी लगा सकते हैं व्यवहार, जैसे कि उसने दिया व्यवहार कारक लगा सकते हैं, तो व्यवहार कारक जनवाणी में लगे हैं, हम भी लगा देंगे। लेकिन समझना असली ये बात कि इससे होने वाला कहीं कुछ नहीं है, स्वयं के अलावा दूसरे से कहीं कुछ होने वाला नहीं है। गाथा में तो मात्र इतना ही कहा गया है कि यह भगवान आत्मा स्वयं ही स्वभाव को प्राप्त कर सर्वज्ञ और सर्वलोक पूजित होता है। बस इतनी सी बात, स्वयं ही सर्वज्ञता को प्राप्त करता है और सर्वलोक से पूजित हो जाता है। इसका अंग स्वयंभू है। षटकारकों की चर्चा गाथा में नहीं है। आचार्य देव ने, टीकाकार आचार्य देव ने, अमृतचंद्र ने, जयसेन ने, जिन जिन ने टीका लिखी ये उन्होंने उसमें लगाई है। पर के सहयोग के बिना जो स्वयं के बल पर प्रतिष्ठित होता है, कुछ कर दिखाता है, उसे लोक में स्वयंभू कहा जाता है। अतः यहां स्वयंभू की व्याख्या में स्वाधीन षटकारकों की चर्चा की है। पंचाशी काय की 62वीं गाथा में विकारी पर्याय भी आत्मा स्वाधीन बने ही प्रकट करता है, यह बताते हुए विकारी पर्याय संबंधी अभिन्न षटकारक की चर्चा की है। और यहां प्रवचन सार की 16वीं गाथा में अनंत सुख और सर्वज्ञता रूप निर्मल पर्याय संबंधी अभिन्न षटकारकों की बात की गई है। मूल बात यह है कि यह आत्मा स्वयं स्वभाव से तो भगवान है ही, पर्याय में भी भगवान स्वयं ही बनता है, स्वाधीन पने ही बनता है, पर के सहयोग के बिना ही बनता है। अतः सर्वज्ञ भगवान स्वयंभू हैं। ये स्वयंभू शब्द का अर्थ है सर्वज्ञता और अनंत सुख। इन दो ही बातें चल रही ना। वहां कल मैंने बताया था शायद कि ये दो अधिकार बटने वाले हैं अभी आगे चल करके। एक पहले सम्यक ज्ञानाधिकार और दूसरा सुखाधिकार। सम्यक ज्ञानाधिकार में ये ना तो ज्ञान स्वभाव की चर्चा करने वाले हैं, न मति ज्ञान आदि की चर्चा करने वाले हैं, उसमें सिर्फ केवल ज्ञान की सर्वज्ञता की चर्चा करने वाले हैं। और सुखाधिकार में पंच इंद्रियों के विषयों के सुख की बात नहीं करने वाले हैं, वो बिल्कुल अनंत सुख अतीन्द्रिय सुख है उसकी बात करने वाले हैं। फिर वो इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान की बात चर्चा कहां करेंगे, उस शुभ भाव अधिकार में फिर वो वहां करेंगे। और उसकी चर्चा करेंगे तो कोई उसकी प्रशंसा रूप चर्चा नहीं करना है। पहले ऐसा आरोप लगाया जाता था कि समय सार में निश्चय की बात है, व्यवहार की बात नहीं है। इसलिए निश्चय का ग्रंथ है, और पंडित हेमंत भाई ने लिखा भी था, तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगला व्यवहार ना ही देवा। मतलब तू निश्चय का ग्रंथ है और व्यवहार के जितने भंग माने भेद हैं उनको भेदने वाला है, उनका खंडन करने वाला है। ऊंचे निश्चय ग्रंथ भंग सगला व्यवहार ना भेदवा। ये भेदने का काम तू करेगा। समय सार की स्थिति है, समय सार की स्थिति कि तू इन व्यवहार के भेदों में भंग करे। तो खेमचंद भाई इसका जवाब देने के लिए समय सार की पहली गाथा से लेकर और आगे 10-20-50 गाथाओं में कैसे निश्चय और व्यवहार दोनों की कैसे वर्णन है समय सार में वो बताते थे कि कौन कहता है कि ये निश्चय का ग्रंथ है। जितनी बात की है निश्चय की उससे कम व्यवहार की नहीं की। और दूसरी बात बताऊं कि दो सगे भाई हैं और दुकान का नाम रखना है और दोनों भाइयों का नाम डालना है तो पहले किसका रखा जाएगा? बोलो, बड़े भाई का नाम रखोगे ना और दूसरा नाम फिर छोटे भाई का। ज्यादातर ऐसा ही होता है ना। भरत बाहुबली बोलते हैं ना सब, बाहुबली भरत कोई नहीं बोलता है। तो समय सार में ऊपर की लाइन में व्यवहार का वर्णन है और नीचे की लाइन में निश्चय का वर्णन है। बड़ा भाई कौन है? व्यवहार नो भाषणी जीवो देहो हवर कलु इको नडु निश्चये न जीवो देहो भी कदापि। व्यवहार की ऊपर اور دوسری لائن میں کیا مجبوری تھی آچاریوں کی ایسی, کم سے کم نشچے کو اوپر تو رکھتے کہ بھیا ویوہار کو پرتیپادن کرنا تھا, اور نشچے کو نشید کرنا تھا, تو پرتیپادن نہیں ہو تو نشید کائے کا کرے, نہیں ایسا نہیں. یہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمارے آگرہ پر اور ہم نے یہ آئے ودوان نے اچھا پروچن کیا, یہ جی کیا وہ کیا, بہت بہت ہم ان کے بہت اپکار مانتے ہیں, دھنیواد دیتے ہیں کیا نہیں, سمجھے نا. اور پھر بعد میں وہ بولتے ہیں تو کہتے ہیں بھیا میں نے کچھ نہیں کیا, میں تو اپنا سوادھیائے کیا اور میں تو میرا تو کام ہی ہے روزانہ, میں تو یہ کرتا ہی, کہاں کہیں بھی رہتا تو بھی کرتا ہی, کیوں کہتے کہ نہیں کہتے ہیں. تو نشید بعد میں بولے نا تو پنڈت کا نمبر پہلے آنا چاہیے تھا بولنے میں, نشید جی پہلے بول رہے ہیں, کبھی نشید کرنا ہے تو بعد میں ہی آئے گا. وہ تو اس پدھتی کی یہ بات تھی کہ جس میں ویوہار کے اوپر کی لائن میں اور نشچے کا نیچے کی لائن میں ورنن ہے, اور نیچے اوپر کی لائن سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. کیوں کہ راجا کے ماتھے پہ کوا بیٹھ جائے تو کوا مہاراجا نہیں ہو جاتا, ارے مکھی بیٹھ جائے, کوا تو بہت مشکل سے بیٹھ پاتا ہے, مکھی تو بہت آسانی سے بیٹھ جاتی ہے کہ نہیں, تو اسے راج تلک نہیں ہو جاتا ہے. سنگھاسن پہ مکھی جا کے بیٹھ جائے تو مکھی کو راج تلک نہیں ہو جاتا ہے, اور جب جو ودھی پوروک منتروں پوروک راجا کو بیٹھایا جاتا ہے وہی بڑا ہوتا ہے. لیکن ورنن ہے تو پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ تم چھ نشچے گرنتھ ہوئی, کہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں مہیما اس کی نشچے کی بتائیے, بھوتارتھ وہ ہے, اس کے آشرے سے سنمان رسن کی پراپتی ہوگی. کیا بھوتارتھ کے مطلب منیورو پراپتی کریں نروان کی ادھی, بھوتارتھ کے آشرے منی راج لوگ نروان کی پراپتی کرتے ہیں. تو اس طریقے سے اپن کہاں پر پنچاسی کائی کی ہوئی, میں بھی وکار بھی سوتنترتا ہے کرتا. مول بات یہ ہے کہ آتما سوبھاؤ سے تو بھگوان ہے ہی, پریائے میں بھی بھگوان سوئم ہی بنتا ہے, سوادھین پنے ہی بنتا ہے, پر کے سہیوگ کے بنا ہی بنتا ہے, اتہ سروگ بھگوان سوئمبھو ہیں. تاتپریہ یہ ہے کہ پرتیک آتما سوبھاؤ سے بھگوان ہے, اس میں پریائے میں بھگوان بننے کی سامرتھ ہے. یہ جو پہلا واقعہ جو میں بتایا نا شکتی ابتے لکھا نا, کیا تھا وہ چھ دفعے آیا ہے جو یہ اس کا بنا بننے کی سامرتھ ہے, یہ اسی کا انواد ہے. مطلب کال لبدی آنے پر سمپورن جگت سے دشٹی ہٹا کر اپنے ترکالی دھرو بھگوان آتما کا انوبھو کر, اس میں اپناپن استھاپت کر, اس میں ہی نج روپ جان کر, اس میں ہی جم ڈم کر, جب یہ آتما شدھوپیوگ روپ پرنمت ہوتا ہے تب پریائے میں بھی پرماتما بن جاتا ہے. دیکھو اتنا تو کام بتا دیا, ایک کر ایک کر ایک کر ایک کر, اور کہتے کچھ کرنا نہیں ہے. پھر پڑھتا ہوں دیکھو دھیان دھیان, ہٹاگت کال لبدی آنے پر, اب ایک شرط کتنی ہوگی, اب کہتے پرادھین نہیں ہے, اب کال لبدی آنے پر سمپورن جگت سے دشٹی ہٹا کر, اب دوسرا کام اپنے ترکالی جو بھگوان آتما کا انوبھو کر, تیسرا تو اس میں اپنا اپن استھاپت کر, چوتھا اسے ہی نج روپ جان کر, پانچواں اس میں ہی جم کر رم کر, چھٹواں جب یہ آتما شدھوپیوگ روپ پرنمت ہوتا ہے, ساتواں تب پریائے میں بھی پرماتا بن جاتا. اب سات کام تو بتا دے, ایسا کر کے ایسا کر کے ایسا کر کے, اور پھر پرماتا بن جاتا ہو کہتے کچھ نہیں کرنا ہے. بھاشا میں تو سات بتا دیے نا, ایک کر ایک کر ایک کر ایک کر, لیکن ان میں ذرا گمبھیرتا سے دیکھو نا کیا کرنا ہے, کرنے کا کچھ ہے ہی نہیں. مطلب اس بھاشا میں ویوستھت کرنا ہے نا, جو کریا سمپن ہوتی ہے उसे करने की भाषा में व्यवस्थित करना है। होने की भाषा में व्यवस्थित भी कर सकते हैं। कैसे करोगे होने की भाषा में? जब काल लब्धि आए, जब दृष्टि पर से हटकर ऐसा बने वाक्य, तो बिल्कुल स्वाधीन दिख जाएगा कि वो, उसे तो हटाना नहीं है, हटेगी वो दृष्टि भी, हटेगी काल लब्धि भी आएगी। काल लब्धि लाने में तुझे क्या करना है? वो दृष्टि हटाने में तुझे क्या करना है? त्रिकाली ध्रुव का ध्यान कर, चाली ध्रुव का ध्यान करने क्या करना है? कि उसमें श्रद्धा कर, अनुभव कर, यानी वो तो सब जो क्रिया होनी है। कब सर जगत से दृष्टि हटी, यहां गई, उसमें ये सब हो गया, तुझे अलग से कुछ नहीं करना है। हम चाहे तो भाषा तो बहुत बड़ी बना सकते हैं ना ऐसी, कि सत्तू मनमत्तू, कब घूरे कब खाए, धान चत कूटी और पट खाई। बुंदेलखंड वालों की तो समझ में आई गई होगी ना, महाराष्ट्रियों की समझ में आई कि नहीं आई? हाथ उठाओ, मालूम तो पड़े कितने लोगों की मैं नहीं आई, तो फिर मैं बताऊं नहीं आई। देखो दो काम है अपन को खाना खाना, तो एक तो आदमी कहते तुम हमारे पास सत्तू है इसे ले लो और अपनी भूख मिटा लो। एक कहता है धान नाम का एक अनाज होता है जिसमें चावल निकलता है, छिलके सहित चावल को धान बोलते हैं, धान में तो बोलते पूरे अनाजों को। अब वो कहते दो में से क्या चाहिए बोलो, जो कोई समझाता है कि सत्तू ले लेगा तो कब घूरेगा कब खाएगा, बहुत दिक्कत है। देखो कुछ नहीं, पानी डाला भर के खा जाना है, कितना सरल है। लेकिन उसे भाषा ऐसी देता है कि कब घोरे कब खाए, ऐसे बोलता है बहुत। तो धान को क्या है, चट कूटी पट खाई। अब मैंने धान जो अनाज है छिलके सहित, पहले उसे दलना पड़ता है, फिर दलने के बाद कूटना पड़ता है, फिर फटकना पड़ता है। मैंने वो सारी क्रियाएं देखी हैं अपनी आंख से, अपनी मां को करते होंगे बराबर साथ। मैंने वो तीन दिन बाद वो चावल अपने हाथ में आता है, जब उसे अपन पका के खा सकते हैं। यानी अपन को कोई अनाज दे देवे और उसका चावल बना के अपन को ही खाना हो तो वो तीन दिन लग जाएंगे, तीसरे दिन मिलेगा। लेकिन वो कहने वाला अपनी भाषा में ऐसा कमाल दिखाता है कि सत्तू मनमत्तू कब घोरे कब खाए, धान तक कूटी पटकार। तो ऐसे ही आत्मा का ध्यान, आत्मा को जानो फिर जानते हो, फिर ये कर। अरे कुछ नहीं है, बहुत सहज प्रक्रिया है, सहज होती है। ख्याल में आई ना, बहुत से लोग कहते हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, तो सब सहज ही हो गया है। बनिया के घर पैदा हुआ है, क्या है, नीचे दुकान ऊपर मकान, रोते रोते नीचे आ गए, दुकान पे बैठ गए, दिख गए सब, बाप का सब सीख गए, वो धंधा करने लग गए। बने बनाए ग्राहक आते थे, बेच देते थे, दे देते थे, क्यों अजित भाई ऐसा ही होता था ना। क्या किया, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। कौन से स्कूल, कौन सी पाठशाला, काय की पाठशाला, जो भी हो, नाई का बेटा, नाई का बढ़ई का बढ़ई का, सबके ऐसा ही होता था ना। मैंने वही सहज और वही कठिनाई। तो देखो यहां प्रदर्शित निश्चय सठ कारक की प्रक्रिया यह बताती है कि इस आत्मा को पर्याय में परमात्मा बनने के लिए पर के सहयोग की रंत मात्र भी आवश्यकता नहीं है। और ये बताना है कि तुझे प्रयोग की सहयोग की जरूरत नहीं है। यह भगवान तो इसको क्या लगता है कि पर का किसी का ही सहयोग नहीं लूंगा तो सारा काम मुझे अपने हाथ करना पड़ेगा, है ना? क्यों ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? हम क्या भैया कि हम मुनिराज हो जाओगे, कि मुनिराज हो जाओगे तो फिर कहां रहेंगे, कहां आटा दाल, कहां बनाएंगे, कौन बनाएगा, कौन खिलाएगा, अरे तेरे को कुछ नहीं करना है, आएंगे लोग नौ दफे नमस्कार करेंगे और हाथ पर रख देंगे, तू चाहता तो वे मुंह में ही रख देते है? लेकिन वो हाथ में रखने की पद्धति है ना, तो वो रख देंगे, तुझे कुछ नहीं करना है, खाना तो जैसे बनता है वैसे ही बनेगा क्या नहीं, लेकिन तुझे कोई फिक्र नहीं करना है, क्या करना है बोलिए। मुनि बन रहा है और कह रहा है कि भोजन की व्यवस्था का क्या होगा, कि तुझे अपने उपयोग को भोजन की व्यवस्था में नहीं लगाना है, कि क्या करना है, कि कहीं नहीं लगाना है, अपने में लगाना है, अपने में लगाना माना कहीं नहीं लगाना ना, अपने में तो लगा ही लगाया है, इसका नाम मुनि धर्म है, तुम्हें अभी याद आना जाता हूं। अरे भाई अभी तेरे को खाने की चिंता है, खाने का क्या होगा, तो तुझे क्या बनना है, क्या बन गया है तू, समझ लेना, घर की भोजन की व्यवस्था बिगाड़ दी, अब वो चिंता गई नहीं, तो रोजाना दो रोटियां खाने के लिए कितनी फिक्र करनी पड़ेगी, कितने लोगों को मक्खन लगाना पड़ेगा, रोजाना एक व्याख्यान आहार दान पे देना पड़ेगा, आहार दान का फुल सीधा साक्षात मोक्ष, कम में तो कोई कराएगा नहीं ना, बताना पड़ेगा ये जिनवाणी में कितना फेरफार करना पड़ेगा, कितनी कितनी झंझट माथे पर ले ली तूने, सच्चा मुनि हो तो उसे ये विकल्प आए। गुरुदेव उदाहरण देते थे बहुत अच्छा, एक गरीब की लड़की सुंदर थी तो एक अरबपति के लड़का रींझ गया उस पर, अरबपति का लड़का रींझ गया और उसने कहा मैं शादी करूंगा तो इससे, और उसने उसकी शादी हो गई, अब शादी हो गई ससुराल गई, अब उसके घर की हालत तो ऐसी थी कि सुबह भोजन की व्यवस्था हो गई तो शाम की नहीं होती थी और शाम की हो गई तो सुबह नहीं होती थी, दोनों टाइम खाना तो महीनों से नहीं मिला था, एक टाइम से ही काम चलाना पड़ता था, ये सब होती थी। तो जब वहां ससुराल में पहुंची तो सासू जी कह रही थी मैं अपनी बहू के लिए सोने का हार बनाऊंगी, हीरों की जड़त अंगूठी बनाऊंगी और ये सब बोलाऊंगी, फलाने बंगाल से साड़ियां मंगाऊंगी, वो आती थी कि ढाका की मलमल जो अंगूठी में से निकल जाती थी उसी बनाऊंगी, ऐसी बहुत बहुत कहती थी, सुन रही थी कि अरे सारा ही मेरी लिए व्यवस्था होगी, ये सब लोग गहने की कपड़ों की ये तो बात करते हैं लेकिन खाने की तो कोई बात ही नहीं करता है। तो उसने अकेले में चुपचाप सासू जी से कहा कि अम्मा जी एक बात तो बताओ कि क्या क्या कि ये सब बातें कह रहे हैं पहनने ओढ़ने की, खाने की तो कोई बात नहीं करता है, भोजन का क्या होगा। तो गुरुदेव कहते थे बहुत रस ले लेकर, और फिर वो कहते थे वो बोली वो कह कह रहे तुझे पता नहीं है तू किसके साथ व्यवहार के कहां आई है, किसके साथ शादी करके आई है, तुझे अभी इसका पता नहीं है। कि नहीं नहीं मैं ना आपका लड़का सेठ जी का लड़का है ना, उसके साथ मेरी शादी हुई है। अरे तुझे पता नहीं है उन्हें सारी जिंदगी भोजन का विकल्प तक नहीं आता, तो वे भोजन नहीं करते हैं। अरे करते तो हैं लेकिन भोजन का क्या होगा, ऐसी व्यवस्था का विकल्प नहीं आता है? तो ऐसे ही तू मुनि धर्म धारण कर रहा है और तुझे भोजन का विकल्प आता है तो ये समझ ले कि वो गुरुदेव का जो उदाहरण है ऐसी बात है। तो फिर मुनिराज भोजन नहीं करेंगे, आहार नहीं करेंगे। अरे भाई वो तो ठीक है उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन अपन हजार आदमी करने वाले दूसरे होना चाहिए तब उन्हें नहीं करना चाहिए, और कोई भी नहीं करे और वे भी नहीं करे, क्यों ऐसा कहीं होता है? तुम हजार खड़े हो जाओ फिर हम कहें, फिर हम कहो किसी आहार दान पर भाषण दें फिर कहें ना, तुम रोजी ने सौ चौकने लगे, हम तो एक शब्द ही नहीं बोले, क्या सोचोगे लगेंगे तो तुम एक शब्द नहीं बोलोगे, नहीं लगेंगे तो बोलना ही पड़ेगा। ये तेरे को पता ही नहीं कि तू किस अवस्था में को वर्ण कर रहा है, हैं? कि मुझे क्या करना पड़ेगा, तेरा सारा करना बंद करना पड़ेगा नहीं? धर्म करने के लिए तो धर्म तो करना पड़ेगा कि बेटा धर्म तो नहीं करने का नाम है, ये सारा करना बंद करना पड़ेगा इसका नाम वास्तविक धर्म है, कोई विकल्प नहीं करने का, निर्विकल्प है ना, निर्विकल्प अनुभव आत्मानुभूति केवल ज्ञान निर्विकल्प दशा में होती है ना, तो विकल्प नहीं करना पड़ेगा इतना नक्की हो गया कि नहीं हो गया है? अब भोजन का होगा क्या, तुम तो साहब बातों में चल रहे, असली बताओ भोजन का होगा क्या, मेरे से पूछते हो मुनिराज इतने पवित्र भाव वाले हैं, अभी शुद्धोपयोग इतना ज्यादा होने वाला नहीं है, मोक्ष जाने की स्थिति बननी नहीं है, तो इतना सातिशय पुण्य उन्हें बंधना है कि रोजीना चक्रवर्ती का कटक जीम जाए, जहां वे खड़े हो जाएं और एक कौर जहां वे खा लें तो उस चौके में चक्रवर्ती की सेना जीम जाए तो भी वो भोजन खत्म नहीं हो, इतना पुण्य बंधने वाला है तेरे को, और तुझे पुण्य बांधने का रंज मात्र भाव नहीं, क्या बात करते हो तुम, मुझे तो ये लगता है कि आहार नहीं मिलेगा, ये बात कहां से लाए तुम, क्या आदिनाथ को नहीं मिला था, अरे वाह तुमने आदि पुराण ऐसा आदि पुराण पढ़ा है, कहां पाप है कहां, जब से उसने लिया है, टोडरमल जी कहते हैं कि पाप का तो अस्तित्व रहा ही नहीं, अशुभ भाव का लगा कि नहीं लगा, तो उसे अनुकूल संजोगों के तो इतने ढेर लगने वाले हैं कि लाखों लोग जय के नारे लगाने वाले हैं, आगे पीछे डोलने वाले हैं, सौ सौ लोग लगाने वाले हैं, आप समझिए ना कितना कितना पुण्य का ढेर और पाप का है कहां, और हमारे दुर्भाग्य है, क्या दुर्भाग्य है कि हमारे मंदिरों में जितने ये चित्र लगे हैं ये सब मेरे सिलेक्ट किए नहीं है भगवान, क्योंकि मैं आया था उसके पहले ही लगे थे, तब से ही लगे, क्यों मैं ऐसा क्यों कहना चाहता हूं, सारे हिंदुस्तान के मंदिरों में जो चित्र लगे हैं बस उन्हीं के दो चार सिलेक्टेड हैं, एक सुकुमार मिल जाएंगे जिन शालिनी खा रही होगी, दूसरे मिल जाएंगे कौन से कुमार हैं, सुकौशल मिल जाएंगे, माथे पे सिगड़ी रखी होगी, अग्नि की पांडवों की अग्नि जल रही होगी, पर ऐसे 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 सब मिलेंगे चित्र सिलेक्टेड, और मेरा यतराज क्या है, ये जब उपसर्ग हुए तो पुण्य के उदय से हुए तो पाप के उदय, तो सब पाप के उदय वालों की जो फोटो लगाए, इनसे असंख्य गुणे ज्यादा ऐसे मुनिराज होते हैं, सुनना मेरी बात में, कि जिनके वो वर्षा होती है फूलों की, जिनके ऊपर कभी ऐसे उपसर्ग नहीं होते, एक लाख में एक नहीं होता ऐसा, क्योंकि सात से पुण्य के धनी होते हैं सब, अब एकाद का कोई निकाह चिन्ह के धरती कोई कर्म कहीं से बता रहा आ गया और लग गया और वो हो गया, अब तुमने एक लाख को तो तुमने गिना नहीं, यदि तुम विद्यार्थी हो 700 हो गए, 700 हो गए, 700 ही बढ़िया बढ़िया है, आराम से कोई आजीविका की कोई परेशानी नहीं है, अरे आधे से ज्यादा मेरे विद्यार्थी मेरे से ज्यादा अच्छी आर्थिक स्थिति में है, मुझे खुशी है इस बात की, मैं दुख नहीं तो कर रहा हूं, ध्यान में आई ना, इस बात की मैं प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं, क्यों क्या क्यों कमी होगी, है? इतना निरंतर पुण्य बंधा, वे सारे मुनिराज के 700 मुनियों का संघ आया,
ایک دن کبھی کچھ ہوا تو اس کی گھٹنا کی لکھ دی اور روز جینا باقاعدے بڑھیا آہار ملتا ہے, کرانے والے کراتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں, سب بڑھیا ہوتا ہے اور یہ سب پنشالی ہوتے ہیں. اب کسی کے درباگ سے کہیں پاپ کا ہو جائے بیچ میں نکل آیا اور تھوڑا ایک آدھ دن, ساری زندگی تو انہیں بھی ملا ہی تھا نا آدر پوروک آ رہا ہے اور ایک دن چوک بھائی گئی, چوک تو ایک دن بھائی کیوں روزانہ بننے کیوں سوچ جی آپ کو روزانہ سب ویوستھا ہوتی ہے کہ نہیں, ایک آدھ دن بھول جائیں گے نا بھول جائے ہو جاتا کہ نہیں, تو ایک دن کو یاد کرو, ایک دن کو یاد کرو. جو نرنتر آگے پیچھے کھڑے ہیں لوگ ان کو تو یاد نہیں کرتے, تو ان کے لگاتے تو ہم کو یہ دکھتا ہے کہ منی ہوں گے اتنی تکلیف, اتنی تکلیف بھوجن کی, اتنی تکلیف فلانے کی, اتنی تکلیف, یہ تکلیفیں تکلیفیں ہمیں دکھتی ہیں. اور ہم جیسا پنہین ہوگا تو ایسا ہی ہوگا. تو پھر لگائے کیوں, ہمارے جو لگائے پوروج تھے انہوں نے غلطی کی کہ نہیں انہوں نے غلطی نہیں کی, اس لیے لگائے کہ تم کو ایسا سنکٹ آئے تو بھی دھیرے رکھنا, تو میرے کو کونے دکھ ہے مرتو مہوتسو بھاری. اس سے زیادہ تکلیف تو نہیں ہوگی, وہ تمہیں بتا دیا گھبراؤ مت, ہم تو گھبرانے لگ گئے. یہ ایسے پرسنگ کبھی آنے والے نہیں ہیں کہ ہم بھوکوں مر جائیں گے, ایسا ہمارے ودیالیہ میں بھرتی ہونے والے کو یہ وکلپ ہے اور ہمارے ادھیاپکوں کو یہ وکلپ ہے کہ یہ سمجھائیں کہ نہیں تم گھبراؤ نہیں, بھوکو نہیں مرو گے, ہمیں مل جائے گی نوکری, مل جائے گی نوکری, مل جائے گی کیا نوکری, نوکری 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 مل جائے گی, نوکری چاہیے کہ مال کی, مال کی بات کرو تم گدی پہ بیٹھو گے, سمراٹ بنو گی, سب آگے میں تمہاری لوگ رہیں گے, مالکی کی بات کرو نا, نوکری کی کیا بات کرتے ہو کہ نوکری مل جائے گی, نوکری مل جائے گی کہ نہیں ملے گی, اور اتنوں کو مل گئی, اتنے کو مل گئی, کیا دین سکھا رہے ہو سچ مچ. یہ ہمارے چنتن بدلنا چاہیے, یہ وکلپ نہیں آنا چاہیے ہمیں. یدی آتا ہے وکلپ تو یہ سمجھنا کہ ہم کیا پڑھ رہے اس کا آپ کو پتا نہیں ہے, سمجھے نا, اس کا آپ کو پتا نہیں ہے یہ کیا چیز ہے. میرا تو آگے بڑھتا نہیں, میرا میں کیا کروں. کل کہہ دیا, میں نکی کر لیا تھا کہ اب میں سترویں اٹھارہویں آٹھا پڑھاؤں گا, اور پھر وہ سولہویں میں لگ گئی, پھر سولہویں میں لگ گئی. اس میں ہے بھائی, ہم کو کہاں یہ وکلپ کی بات ہے, یہ کہاں کسی کو رہی. بابو بھائی تھے تو جب دو تین سال ہو گئے اور میں اکیلا تھا پڑھانے والا, پھر اتنا زیادہ پیریڈ میں نہیں پڑھا سکتا تھا, تین تین بیچ میں تو میں نے پڑھایا سب کو پورا, ایک جتیش بھائی ابھائی جی والے میں, شانتی جی والے میں, اور ایک پھر کون ہے پھر تیسرا پیر ساگر, ویر ساگر ہے نا ٹاپ کم یونیورسٹی میں, ان تین گروپ کو میں نے پورا پڑھایا ہے. یہ وہ لکش دان کو مجھے چھوڑ دو, ان کے لیے پنڈت جی پڑھانے آتے تھے. پھر بعد میں کہا کہ دوسرا کوئی جی کا سہیوگی تو ہونا چاہیے, سہیوگی تو ہونا چاہیے, تو میں نام نہیں بتاؤں گا. جب بعد میں بڑے دادا آئے اور لوگ آئے تو ایک ودوان سے بات چیت بھائی, بات چیت بھائی تو اور سب بات ہو گئی یہ کر کے, اور وہ کہیں گے صاحب میں گورنمنٹ سروس میں ہوں, تو گورنمنٹ سروس چھوڑ کے آؤں گا تو میری گارنٹی کیا ہے, یہ تو پرائیویٹ نوکری ہے کبھی بھی چھوٹ جائے گی, تو گارنٹی کیا ہے پرائیویٹ کا کی. تو بابو بھائی نے بہت سمجھایا, اور بابو بھائی نے یہ بھی کہا کہ یہ پنڈت جی ہی گورنمنٹ کی نوکری چھوڑ کے آئے ہیں, انہیں کیا تکلیف ہوئی, انہیں کیا تکلیف ہوئی, یہ تو دس سال پندرہ سال سے ہیں, کوئی تکلیف ہوئی انہیں کیا. تو ان کی بات الگ ہے, ان کی بات الگ ہے, ان کی بات الگ ہے, سمجھ رہے ہیں نا. لیکن میری گارنٹی کیا, گارنٹی کیا. تو ان نے بابو بھائی نے کہی کہ میں ہوں نا, میں بیٹھا ہوں نا, میں گارنٹی دے رہا ہوں, میرے پہ بھروسہ ہے کہ نہیں. آپ پہ تو ہے لیکن آپ نہیں رہو گے تب کیا ہوگا. اجمیر کی بات ہے, اجمیر صدر میں
किले के ऊपर ये घटना घटी कि आप नहीं रहो तो बाबू भाई ने कहा नहीं आप सर्विस करो वहीं रहो आराम से रहो। उनको बिल्कुल मना कर दिया कि अब आप मत आओ। फिर मेरे से बोले क्या हुआ क्या हुआ, तो मेरे से बोले बाबू भाई कि मेरे मरने के बाद गारंटी मांगता मेरे से। अरे भाई मैं मरता हुआ तो तुम भी नहीं मरोगे क्या है? अरे अपने पुण्य का इतना भरोसा तो रखो, बहुत बार बार कहा था बाबू भाई ने अपने पुण्य का कुछ भरोसा तो रखो कुछ भरोसा तो रखो कुछ भरोसा तो रखो। नहीं 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 आए फिर मैं ये कहता हूं कि क्या हमारा चिंतन बिल्कुल बदल जाना चाहिए। मुझे यहां से शेर पैदा करना है, गिरल पैदा नहीं करना है। ई कहने समाज में जाकर के आगे गिर गिना है, ऐसे मुझे विद्वान नहीं चाहिए। समझ रहे ना जा, मुझे तो ये शिकायत आए क्या तब मुझे चाहिए कि साहब उसने हमारी ये बात नहीं सुनी ये नहीं सुनी ये कह दिया मैं ये नहीं मानूंगा ये नहीं करूंगा तब मुझे खुशी होगी। मेरा छोटा भाई था फिर स्वर्गवास हो गया बेचारे का, मेरे से 11 साल छोटा था, मेरा विद्यार्थी भी था, मेरा भाई भी था, बेटा भी था, जो कुछ भी था सब था। मैं हम सब उसके संरक्षक थे, दोनों भाई सब हम काम करते थे, स्कूल में पढ़ता था उसी स्कूल में मैं पढ़ाता था, मैं टीचर था और वो पढ़ता था। विद्यार्थियों का उद्यम हुआ, झगड़ा हुआ, आपस में झगड़ा मारपीट हुई तो मेरे पास आया और उसने कहा कि उस लड़के ने मेरे को पीट दिया, दो चौंटा मैंने मारे। मैंने कहा तुम पिट के आया है मेरे पास? अरे तू चाल लगाता ना, क्यों आया मेरे पास? फिर कोई बात नहीं, फिर मैं अस्पताल में तुझे देखने आता, मैं जानता हूं तू चाल लगाता तो वो भी आठ लगाता है? वो ताकत ज्यादा थी उसमें, तुम में कम थी, लेकिन अस्पताल में जाते ना तो मैं गौरव के साथ जाता कि मेरा भाई अस्पताल में भर्ती है। चाल लगाया ना तब मैं मुझे खुशी होती। ये सच्ची घटना है, सच्ची घटना। और फिर वो उसको ऐसा रंग चढ़ा, उसका ऐसा रंग चढ़ा कि उसने पुलिस वाले की मोटरसाइकिल लेके कुएं में डाल दी। सचमुच ये बात है, मुझे ऐसे गौरवशाली योद्धा चाहिए जिनके भरोसे ये लड़ाई लड़ी जाएगी मिथ्यात्व से। ये भयंकर लड़ाई साधारण नहीं है, ऐसे लोगों के नहीं है। बहु भाई कहते थे मुझे हिजड़ों की फौज थोड़ी तैयार करना है, ऐसा कहते थे। सचमुच ये वस्तु तुम्हारे पास माल इतना है, बढ़िया है, इतनी बढ़िया चीज है जिसके बल पर तुम सब कुछ कर सकते हो।